I have to start by saying Priya Bhai or Bheno, Namo Buddhaya, Jai Bheem. I was overwhelmed by the sight of 500 order members in front of me.
तो मैं यानी मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं उभर के आ गया इतने सारे संघ सदस्य इकट्ठा देखते हुए.
I arrived in India just over 2 months ago.
मैं 2 महीने पहले भारत में आया.
And I must have given 40 talks or more during that time.
और मुझे ऐसे लगता है कि इन दिनों में मैंने 40 प्रवचनों से ज़्यादा प्रवचन दिए हैं.
Or should I say, we must have given more or less 40 talks.
या मैं ऐसे कहूंगा कि हम दोनों ने वह प्रवचन दिए हैं.
Because we're a double act.
क्योंकि हमारा दुहेरी भूमिका है.
जुगलबंदी. And well, it's quite a change from the audiences that I usually address.
और मैं यह महसूस कर रहा हूँ कि जो प्रेक्षक गण है उसमें एक बदलाव मैं महसूस कर रहा हूँ.
There's an immediate change in the quality of attention.
तो एक तरीके से जो एकाग्रता मुझे मिलती है सुनने के लिए उसमें अचानक बदल मैं महसूस कर रहा हूँ.
Which is quite strongly affecting.
और इसका प्रभाव मेरे ऊपर हो रहा है.
I've been in Bodh Gaya for 10 days.
मैं बोध गया में 10 दिन से हूँ.
And over the last 2 days, I've seen order members accumulating in Bodh Gaya.
और पिछले 2 दिनों से मैं देख रहा हूँ कि धीरे-धीरे संघ सदस्य जो है वह इकट्ठा हो रहे हैं बोध गया में.
And as they've begun to arrive, and particularly from yesterday, a quite new spirit is abroad.
और विशेषतः कल से जब यह संघ सदस्य आ रहे हैं तो एक नई ऊर्जा मैं महसूस कर रहा हूँ.
And I feel myself lifted onto a quite new level.
और मैं अपने आप को एक नई ऊंचाइयों में पा रहा हूँ.
Of course, being at Bodh Gaya, I've spent as much time as I could at the feet of the Buddha.
बोध गया में जब तक मेरा वास्तव्य रहा मैंने पूरी कोशिश की कि बुद्ध के चरणों के पास मेरा ज्यादातर समय जाए.
Every morning I've gone and sat right up against the railings to the Vajrasana.
हर सुबह मैं उठकर जाता था और वो दीवारों से जो पेड़ दिखता है बुद्ध के चरण जिसे मैं कहता हूँ बिल्कुल उसके समीप मैं बैठता था.
I'm just trying to open myself up to the Buddha.
और अपने आप को बुद्ध के प्रति खुला करने की मैं कोशिश कर रहा था.
And a very, very powerful experience, as no doubt everybody knows.
और हर किसी को शायद यह अनुभव होगा कि यह बहुत ही प्रबल अनुभव है.
A lot of the time it's very, very uplifting and moving in an inspiring way.
प्राय यह ऐसा होता है कि हमें ऊंचाई या हमें ऐसे लगता है कि मैं उच्च मानसिक स्तर पर हूँ. अक्सर हम सब लोग यह पाते हैं.
But running through that experience is also a more uncomfortable experience.
लेकिन उस अनुभव से जब हम प्रवास करते हैं या गुजरते हैं तो वह थोड़ा कष्टदायी भी हो सकता है.
When you stand before a very bright light, all the stains on your clothes are revealed.
जब आप किसी भी प्रकाश के या तेजस्वी प्रकाश के आगे खड़े होते हैं तो आपके कपड़ों के ऊपर जो गंदगी है वह स्पष्ट दिखती है.
So sitting there in the brilliant light of the Buddha really exposes me.
तो जो बुद्ध का जो तेज पुंज है या उनका जो प्रकाश है उसमें जो
Yeah, me.
तो मेरा जो स्व है वह मुझे स्पष्ट नजर आता है.
And all my petty selfish interests.
और मेरे जो सारे स्वार्थपूर्ण जो भाव है वह मुझे नजर आते हैं.
Extremely humiliating.
और यह बहुत ही कष्टदायी होता है.
Here I am at the Vajrasana and I'm interested in breakfast and what they've said and what they will do.
तो मैं यहाँ वज्रासन के आगे बैठा हूँ और मेरा जो मन है नाश्ते में जा रहा है खाने में जा रहा है या ऐसे जो निम्न स्तर के चीजें है उसमें व्यस्त है.
There it is. That's the fact.
अब यह तथ्य है.
Two levels always.
तो यह दो हमेशा यह दो स्तर पे यह चलता है.
Very strong faith, very strong response to the Buddha.
एक गहरी और प्रबल श्रद्धा और प्रतिसाद बुद्ध के प्रति.
And the wheel still spins.
और फिर से जो चक्र है वह घूमते रहता है.
That's the practice of being at the Mahabodhi temple.
यही हमारा अभ्यास है या आचरण है महाबोधि विहार में होते हुए.
So yes, I spent a lot of time just sitting with my nose up against the railings.
तो ज्यादातर समय मैंने अपना जो चेहरा है वह बुद्ध के प्रति स्थिर रखा.
But there are a number of other places around the Mahabodhi temple that I find very important to me.
तो उस महाबोधि विहार के इर्द गिर्द और भी ऐसे कुछ स्थान है या स्थल है जो मेरे लिए काफी महत्वपूर्ण है.
The most important of those after the tree itself is the pillar that you find at the bottom of the main stairs coming down to the temple.
तो मेरे लिए उस बोधि वृक्ष के पश्चात या उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जगह जो मुझे लगती है वहाँ एक स्तंभ है जैसे ही हम पहली सीढ़ियाँ मंदिर के आगे उतरते हैं.
You know, you come down the steps and right in front of you is a rather battered, I think it's Gupta period pillar.
और उस सीढ़ियों को उतरते ही वहाँ पे एक स्तंभ है जो गुप्तकालीन है.
And it marks the site of the Ajapala Nigrodha.
और वह जो स्थल है वहाँ पे अजपाल वृक्ष था.
And there the Buddha had a series of very important experiences.
और अपने अनुभवों की श्रृंखला में वहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण अनुभव बुद्ध को आया.
Because although the experience of enlightenment under the tree was the principal experience, a whole lot of things began to unfold from that, it seems.
निश्चित ही जो बोधि वृक्ष के तले बुद्ध का जो अनुभव आया वह प्रमुख था, महत्वपूर्ण था और बुनियादी था, लेकिन उसके पश्चात भी ऐसे कई महत्वपूर्ण अनुभव बुद्ध को इर्द गिर्द के स्थलों में आए.
That was, so to speak, the decisive experience.
और
महाबोधि
तो वृक्ष के तले जो था वह एक अति महत्वपूर्ण कह सकते हैं अनुभव था.
That's where he conquered Mara and gained liberation.
वहाँ पे उन्होंने मार की विजय हासिल की और अपने आप को मुक्त पाया.
But he saw things that had never been seen before.
लेकिन उन्होंने ऐसी चीजें देखी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी.
He had no guide.
उनके पास कोई मार्गदर्शक नहीं था.
So he had having to work everything out for himself.
तो अपने आप के लिए हर चीज को उन्हें यानी कार्य करना पड़ा.
So you could say that the enlightenment that took place at the Mahabodhi temple was a process.
तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो संबोधि की प्राप्ति बुद्ध को महाविहार में हुई वह एक प्रक्रिया थी.
Yes, under the tree he let go of ego clinging.
निश्चित ही वृक्ष के तले उन्होंने अपने आसक्ति को नष्ट किया और उसे छोड़ दिया.
But what happens next?
लेकिन उसके पश्चात क्या हुआ?
And it seems as if the Buddha moved from tree to tree in the jungle there.
और बुद्ध उसके बाद एक वृक्ष के बाद दूसरे वृक्ष में बार बार गए उस परिसर में.
According to quite late tradition, there were, I think, five places that he moved to.
उत्तर परंपराओं में या बाकी परंपराएं हमें ऐसी बताती है कि वहाँ जो पांच मुख्य वृक्ष थे वहाँ पे बुद्ध गए.
And you'll find them marked at various places around the site.
और जहाँ जहाँ बुद्ध गए थे वहाँ वहाँ उनके निशान हैं.
I believe most of those are modern inventions.
और मुझे ऐसा लगता है कि यह सारे जो खोज है यह आधुनिक है.
Somebody's just decided that's where he did this.
किसी ने बिल्कुल यानी सोच लिया कि यहाँ पे शायद बुद्ध होंगे.
But we do know that where the Ajapala Nigrodha tree was, that was that spot.
लेकिन हम यह निश्चित जानते हैं कि जो अजपाल निग्रोध जो वृक्ष था वो उसी स्थान पे था जहाँ आज हम उसे देखते हैं.
As far as I know.
जहाँ तक मैं जानता हूँ.
So yes, you imagine the Buddha moving from place to place, sometimes just walking up and down, sometimes deep in samadhi, sometimes reflecting.
तो आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कि बुद्ध यहाँ से वहाँ जा रहे थे, गहरे समाधि में थे और अपने चिंतन में थे.
And he's trying to see what the implications are of what he's realized.
और वे यह देखने की कोशिश कर रहे थे कि जो मैंने खोजा है या पाया है उसका क्या परिणाम मेरे ऊपर हो रहा है.
So he according to late tradition on the fifth week I think sat down under the Ajapala Nigrodha tree.
तो पांचवे सप्ताह में बुद्ध अजपाल निग्रोध वृक्ष के तले बैठे थे.
It's a banyan tree.
वह बरगद का पेड़ था.
You know, the tree that sends down roots from its branches.
ऐसा पेड़ जो अपने शाखाओं से जड़ों को नीचे छोड़ता है.
So it's a very good place to sit.
तो यह बहुत अच्छा वृक्ष है बैठने के लिए.
It very thick foliage and very sheltered.
क्योंकि यह आश्रय देता है और काफी विशाल होता है.
But yes, there he had his first encounter with another human being.
लेकिन वहां पे बुद्ध को सबसे पहले किसी अन्य मानव के साथ उनकी भेंट हुई.
There are different traditions. In some accounts, he just met one Brahmin. In some, he meets a number of Brahmins.
अब अलग-अलग इसके संदर्भ में मिलते हैं. कुछ परंपरा यह बताती है कि वे केवल एक ब्राह्मण को मिले. कुछ परंपराएं में यह बताती है कि वे कई ब्राह्मण को मिले.
But you imagine he's not seen anybody since he arrived at the Mahabodhi tree and taken the milk rice.
और आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कि जब से बुद्ध ने वह खीर ली थी उसके पश्चात संबोधि के बाद भी वह किसी भी इंसान को नहीं मिले थे.
Just alone, absorbing his experience.
केवल वो अकेले थे और अपने अनुभव को वह आत्मसात कर रहे थे.
So while he's sitting there, some Brahmins come to him.
तो वहां पे जब वह बैठे थे तो वहां पे एक ब्राह्मण आया.
And well, I don't have to spell out the significance of that encounter. It's pretty obvious.
अब मैं इसके बारे में अधिक विस्तार से बताना जरूरी नहीं समझता हूँ कि आप लोग समझ सकते हैं कि किस प्रकार का वह सामना होगा.
The Brahmins are the priestly caste. They're the dominant caste in the caste system.
जाति व्यवस्था में जो ब्राह्मण है वह सबसे हावी और प्रभावी जात है.
They believe very strongly that they are the superior caste, that is, so to speak, the medium between human beings and the gods.
वे ऐसा विश्वास रखते हैं या मानते हैं कि वे सर्वोच्च जाति है या मानव है और वे जो अन्य मानवीय समाज है और जो ईश्वर है उसके बीच का एक दुआ है.
So just to cut a long story short, they ask him, what makes a Brahmin?
तो उस ब्राह्मण ने बुद्ध को पूछा कि कौन सी चीज से ब्राह्मण होता है.
And the Buddha just rejects the Brahminical social order.
और बुद्ध ने वह जो Brahminical समाज व्यवस्था जो है ब्राह्मणी समाज व्यवस्था है उसको नकारा.
Just think of this. This is his first human encounter.
अब इसके बारे में सोचिए कि यह पहला मानवीय संवाद बुद्ध का था.
It's deeply significant.
और यह गहराई से इसका महत्व रखता है.
He says basically it's worth, not birth, in Baba Sahib's words, that makes you a worthy human being.
तो बाबा साहब के शब्दों में अगर रखा जाए तो यह आपकी योग्यता है ना कि आपका जन्म है जो आपको किसी चीज के लिए लायक बनाता है.
So the Buddha's first encounter with another human being is to reject the unjust hierarchical social order.
तो बुद्ध का सबसे पहला ही मानवीय संवाद जो था यह अन्याय मूलक और असमानता मूलक समाज व्यवस्था को नकारना था.
You can imagine that encounter for us in India is very very appealing.
और यह जो सामना है भारत में आप कल्पना कर सकते हैं कि काफी छू लेने वाला है.
I have a private dream that one day there will be a statue of Baba Saheb, Dr. Baba Saheb Ambedkar, at that spot.
तो मेरा यह निजी सपना है कि एक दिन वहां जो स्तंभ है वहां बाबा साहब का पुतला हो.
So yes, it's where the Buddha launched the Dhamma revolution.
वहीं पे बुद्ध ने धम्म क्रांति की नींव रखी.
That Dhamma revolution that was relaunched by Dr. Babasaheb Ambedkar in 1956.
और 1956 में बाबा साहब ने उस धम्म क्रांति की पुनर्स्थापना की.
So that's the first thing that happened.
तो यह पहली बात हुई.
I could give a whole talk on that, of course.
अब केवल इसी कहानी के ऊपर मैं पूरा प्रवचन दे सकता हूँ.
In fact, I could give a series of talks, and I've just done that.
और इसके ऊपर मैं श्रृंखला ही दे सकता हूँ जो मैंने अभी अभी पूर्ण की.
But so the Buddha had another very significant experience there.
लेकिन और भी दूसरा महत्वपूर्ण अनुभव बुद्ध को वहाँ आया.
That's the experience of wondering whether he could communicate what he'd realized.
और वह सोच रहे थे कि जो कुछ भी उन्होंने खोजा है या महसूस किया है वह और लोगों से संवादित कैसे करें.
And having that vision of humanity like lotuses at different stages of unfoldment.
और उन्होंने वह एक अपनी दृष्टि देखी कि एक कमल कुंज उन्होंने देखा जो सब कमल जो बढ़ रहे हैं.
And that led him therefore to realize that he could teach.
और उससे उस यानी प्रतिमा से उन्हें यह महसूस हुआ कि वो औरों को शिक्षाएं दे सकते हैं.
And what induced him to open the doors of the deathless.
Open the doors of
the deathless.
तो इससे उन्होंने यह पाया कि जो अमरत्व के जो द्वार है वह वहां से खुले.
And because of that, here we are.
और उसी के वजह से या वही एक कारण है क्यों हम सब लोग यहाँ हैं.
But there's a third experience, which is the one I really want to talk about.
तो वहाँ तीसरा और एक अनुभव है जिसके बारे में मैं अभी कहना चाहता हूँ.
But I wanted to just bring out the richness of the Buddha's experience at the Mahabodhi Temple.
तो मैं जो बुद्ध का जो एक यानी गहरा जो अनुभव था उसको मैं अधिक उजागर करना चाहता था.
And he had an experience here that has been very very important. To Bhante.
और यह जो अनुभव है यह भंते के लिए बहुत महत्वपूर्ण है.
And this is what we have an account of in the Garva Sutta in Samyutta Nikaya.
और संयुक्त निकाय के गर्व सूत्र में हमें इसका संदर्भ मिलता है.
I'll tell you about that sutra in a minute.
उसके बारे में उस सूत्र के बारे में मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा.
But while I was having the conversations with Bhante that have led to the various papers I've recently published, he dwelt on this.
तो अभी अभी जो मैंने अपना आलेख जो लिखा है भंते के साथ चर्चाएं करके उसमें मैंने इसका जिक्र किया है.
And he said that reading the Garva Sutta enabled him to understand something about the Buddha's experience that nothing else had opened up for him.
और वह गर्व सूत्र को पढ़कर उन्हें ऐसा अनुभव आया कि
it opened something up for him that nothing else had.
तो उससे उस सूत्र को पढ़कर उनमें ऐसी कुछ बातें खुली जो पहले उन्होंने कभी उसका अनुभव नहीं किया.
And he said that it enabled him to understand more deeply what the Buddha had realized.
और वे और अच्छी तरह समझ पाए कि क्या बुद्ध ने पाया.
And it explained his own experience, he said.
और उन्होंने कहा कि मानो उन्होंने जैसे अपने अनुभव को बताया.
And he said he thought it was rather extraordinary that this is hardly ever commented on in later tradition.
और वह कहते हैं कि यह बहुत असाधारण या आश्चर्य करने वाली बातें हैं कि आने वाले परंपराओं में इस के ऊपर ज्यादा वक्त हुए या लिखा नहीं हुआ.
So what happens in the Garva Sutta?
तो गर्व सूत्र में क्या होता है?
By the way, there are two sources for this.
इसके लिए दो स्रोत या दो संदर्भ हमें मिलते हैं.
There's one in Samyutta Nikaya, another in Anguttara Nikaya.
एक संयुक्त निकाय में हमें सूत्र मिलता है और एक अंगुत्तर निकाय में हमें सूत्र मिलता है.
Interesting and significant differences, but I'll come to that later.
और इन दोनों में भी अलग अलग उनके महत्व है लेकिन उसके बारे में मैं बाद में कहूंगा.
So, what happens?
तो क्या होता है?
The Buddha is sitting there under the tree.
तो बुद्ध वहाँ पेड़ के नीचे या उस वृक्ष बोधि वृक्ष के नीचे बैठे.
We can imagine that he's reflecting on his experience.
और हम कल्पना कर सकते हैं कि अपने अनुभव के बारे में वह चिंतन कर रहे थे.
He's sort of seeing the full depth and breadth of his experience.
और वह पूर्णतः अपने अनुभव को आत्मसात कर रहे थे उसे देख रहे थे.
So he asks himself, who can I revere and obey?
तो उन्होंने अपने आप से यह पूछा कि मैं किसका आदर कर सकता हूँ और किसका मैं पालन कर सकता हूँ.
Very significant. The word is obey.
यह बहुत महत्वपूर्ण है कि पालन करना.
गर्भवती एंड पसति
गर्भवती एंड पसति
जिसमें दो पाली शब्द हमें मिलते हैं गर्भवती और पसति
एंड यस ही रिफ्लेक्ट्स वेल इफ यू डोंट हैव एनीबॉडी और एनीथिंग to revere and rely upon it's a source of great suffering
aur unhone yah paya ki agar aisa koi bhi vyakti na ho jiske upar hum nirbhar reh sakte hai ya jiska hum aadar kar sakte hai yah kafi peeda dayi kashtadayi dukhdayi ho sakta hai
well that already is very very interesting
yahi baat apne aap mein kafi ruchkar hai
if you can't look up to something if you can't rely on something deeply painful
aap agar kisi ke upar nirbhay nahi reh sakte ya kisi ka aadar nahi kar sakte yah kafi peedadayi ho sakta hai
I don't know whether any of you can recall experience of this
mujhe iske bare mein pata nahi ki agar aap in anubhavon ko yaad kar pa rahe ho
but well I've written about it but some 10 or 15 years ago I had a sort of crisis
to 10-15 saal pehle maine iske bare mein likha jab main is crisis samasya se guzar raha tha
what I called walking in the valley of the shadow of death
jise maine kaha ki main apne mrityu ke chhaya se guzar raha hu
this of course is a biblical reference
yah ek sandarbh suchi thi
but the feeling was of deep nothingness
lekin woh aisa bhav tha jahan pe kuch nahi hai
I come to doubt bhante
maine bhante ke upar sanshay lena shuru kiya
for a while I couldn't revere him or rely upon him
aur kuch der tak ya kuch samay tak main unke upar yani unka aadar nahi kar pa raha tha unke upar nirbhar nahi ho pa raha
had come to me through him
kyunki dhamma mujhe bhante se mila hai
so what lay behind him I also couldn't revere and rely upon
to
what lay behind him or beyond him
jo bhi unse pare hai uske bare mein main uska aadar ya uske upar nirbhar nahi ho pa raha tha
and I don't think I've ever had a more painful period in my life
aur mujhe nahi lagta ki isse sabse yani isse zyada takleef mere jeevan mein mujhe kisi aur kaal mein hui hogi
you know looking back on it it was a good thing and all that
जब मैं इसके पीछे देखता हूँ या मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो यह एक अच्छा भाव है
But I wouldn't wish it on my worst enemy.
लेकिन यानी मैं ऐसा नहीं सोचता कि यह समय मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था
Suddenly the lights have gone out.
क्योंकि अचानक जो प्रकाश है या जो उजाला है वह चला गया
Suddenly the compass has no needle.
क्योंकि जो कंपास जिसे हम कहते हैं उसकी जो सुई है वह सुई खो गई थी
Suddenly you don't know which is up, which is down.
अचानक क्या उच्च है क्या निम्न है यह मैं सोच नहीं पा रहा था
Because you're just left with you.
क्योंकि मैं अपने आप को बिल्कुल अपने साथ ही यानी अकेला छोड़ दिया गया
If you don't have anything to revere and rely upon, it's just you.
क्योंकि अगर आप किसी के भी ऊपर निर्भर नहीं रह सकते या किसी के ऊपर आप यानी आदर नहीं कर सकते देख नहीं सकते तो केवल आप अकेले ही अपने आप को पाते
हैं
और यह बहुत ही असंतुष्ट मानसिक अवस्था
I remember when my mother was very ill and near to death she mentioned an experience like this
मेरी जो मम्मी है या मेरी जो माँ है उसके बारे में मैंने महसूस किया कि जब वे मृत्यु के करीब थी तो ऐसा अनुभव उन्होंने मुझे बताया
She was just lying on her bed
अपने शैया पे वह लेटी हुई थी
For a few years
कई सालों तक
And she said to me one day I'm fed up with being me
और उन्होंने कहा कि मैं इससे भी त्रस्त आ गई हूँ कि यानी अपने आप को जो मैं महसूस कर रही हूँ
Just going round and round inside your own silly head
हमारा जो बेवकूफ भरा जो मस्तिष्क या मन है उसमें बार बार हम जाते हैं
That's what it is to have nothing to revere and rely upon
ऐसा ही होता है जब किसी के भी ऊपर हम जब निर्भर नहीं होते हैं या किसी का आदर नहीं करते
You're left with your own ego identity and that's it
अपनी जो स्व की जो पहचान है बस अपने आत्मवाद के साथ ही हम जीते.
This is the hell of atheism.
और यह
atheism.
यह ईश्वरवाद का नरक है.
Theism is a hell too, but that's a different matter.
अब जो अईश्वरवाद जो है वह भी अपने आप में नरक है, लेकिन वो अलग बात है.
But yes, if you do not have anything to revere and rely upon, life is so limited and dull and dark, heavy.
ऐसी कोई भी बात अगर हमें निर्भर या जिस होने के लिए नहीं रही, तो हमारा जीवन जो है वह काफी निराश और अंधकारमय हो जाता है.
It's almost as if, as a human being, you must have something beyond your ego identity.
एक इंसान होने के नाते हमें ऐसी कोई तो भी चीज चाहिए जो हमारे अहंकार से परे हो.
So even the Buddha felt this.
स्वयं बुद्ध ने भी यह महसूस किया.
After his awakening, he still felt he needed something to revere and rely upon.
अपने संबोधि के पश्चात भी उन्होंने ऐसा महसूस किया कि मैं किसके ऊपर निर्भर रहूं या किसको मैं उच्च स्तर पर देखूं.
So Bhante said, "Why has nobody got anything to say about this?"
Bhante ने कहा कि क्यों नहीं आज तक किसी ने इसकी बात की.
It's so significant.
क्योंकि यह महत्वपूर्ण है.
So the Buddha then says, "Well, I can't see anybody who's can tell me anything about Shila."
तो बुद्ध ने यह पाया कि ऐसा कोई भी व्यक्ति मुझे नहीं दिख रहा है जो
can tell me anything about Shila.
जो मुझे शील के बारे में कुछ बताए.
If I needed to perfect myself in Shila, well, I could find somebody to help me.
अगर मुझे शीलों में पूर्णता आत्मसात करनी है, तो मुझे किसी को तो भी ढूंढना होगा.
I don't need anybody to rely on, and there's nobody I can rely on.
तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके ऊपर मैं निर्भर रहूं, या मुझे किसी की शीलों में पूर्णता हासिल करने के लिए आवश्यकता भी नहीं है.
Same for samadhi, the same for prajna, the same for vimukti.
यही समाधि के लिए है, प्रज्ञा के लिए है और विमुक्ति के लिए है.
And in the other account, also knowledge of liberation.
और किसी दूसरे संदर्भ में मिलते हैं कि जो मुक्ति के लिए जो ज्ञान होता है उसके लिए भी.
So then he says that let me dwell, revering and relying upon this Dhamma to which I have fully awakened.
तो तब उन्होंने पाया कि मैं अभी धम्म के ही ऊपर पूरी तरह निर्भर हो सकता हूँ और उसी को ही मैं अपना उच्च स्थान मान सकता हूँ जिसके कारण मैं यहाँ तक आया.
So in my conversations with Bhante, we had a lot of discussion about what Dhamma means here.
तो बंते के साथ जो मेरे संवाद हो रहे थे उसमें मैंने काफी चर्चा इसके बारे में की कि इस परिपेक्ष में धम्म क्या है.
Of course, he did not mean merely a teaching.
निश्चित रूप से वह केवल शिक्षाई है ऐसा वह नहीं कह रहे थे.
He didn't mean just a set of words, huh?
केवल शब्दों का एक संचय है उतना ही है ऐसा नहीं.
He meant something that you could experience.
उनका मतलब यह था कि ऐसी कोई बात जिसको आप अनुभव कर पाएं.
That's at least the nearest we can get to saying what it is.
वही एक करीबी समझ है जिसके पास हम जा सकते हैं.
Of course, we pass beyond words when we try to talk about this.
हम शब्दों के परे जाते हैं जब इनके बारे में हम बात करते हैं.
You know, it's said of the bodhicitta that it cannot be found within the five skandhas.
ऐसा कहते हैं कि जो बोधिचित्त है वह पांच स्कंदों में ही नहीं पाया जाता.
And all our ways of thinking, all our ways of talking are derived from the five skandhas.
भले जो हम कहते हैं, पेश आते हैं, आचरण करते हैं, वह पांच स्कंदों से आया हुआ होता है.
That's all we can do. We can just use the language of our ordinary experience.
हमारे सामान्य अनुभवों के लिए हम हमारे सामान्य शब्द या भाषाओं का ही इस्तेमाल कर सकते हैं.
So the same applies to Dhamma in this sense.
तो धम्म के लिए भी इस परिप्रेक्ष्य में वही है.
It's something that is directly experienced.
ऐसी कोई बात जो प्रत्यक्ष रूप से आपने अनुभव की हो.
And that is, well, in Bhante's phrase, dynamic.
और भंते के शब्द में इसे एक
dynamic, active,
एक सक्रियता कह सकते हैं.
It's not something that you statically observe.
ऐसी कोई बात नहीं जो दूर से एक स्थित है उसको हम देखते रहे, उसका निरीक्षण करते रहे.
It's something that begins to move within you.
ऐसी कोई बात जो आपके अंदर संचारित होती है, प्रचलित होती है?
So yes, the Dhamma is, in Bhante's understanding, an active principle.
तो भंते के शब्द में धम्म जो है यह एक सक्रिय तत्व है.
And but at the same time, the Buddha speaks of revering and relying upon it.
लेकिन उसी वक्त बुद्ध निर्भर होने की या किसी को उच्च स्तर पर देखने की बात कहते हैं.
So that in the language itself, there's a metaphorical separation between the Buddha and the Dhamma.
तो इस भाषा में ही अपने आप में एक वक्तृत्व शैली है, एक अलंकारिक कृत भाषा है के
a separation, metaphorical separation between the Buddha and the Dhamma.
तो बुद्ध और धम्म के बीच ही एक अलंकारिक विभाजन है.
If you rely on something, well, it's something separate from you.
तो अगर आप किसी के ऊपर निर्भर होते हैं तो यह आपसे परे है या आपसे भिन्न है.
And yet, in a sense, it's not separate from the Buddha.
और एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह बुद्ध से भिन्न भी नहीं है.
It's something that's the Buddha that unfolds within the Buddha and that he opens himself up to.
तो ऐसी कोई बात जो बुद्ध के मन में ही अपने आप खुलती है और वह उससे उनसे भिन्न है.
Because the Buddha still has a body.
क्योंकि बुद्ध के पास अपना शरीर है.
He's still got a psychophysical existence.
जो उनके जो भौतिक और मानसिक जो अस्तित्व है वह अस्तित्व है.
And he subordinates that to the Dhamma to which he has fully awakened.
और वह उस यानी धम्म के
puts himself under.
और अपने आप को वो धम्म में उस मानसिकता को और शरीर को रखते हैं.
And he serves the Dhamma from that point onwards.
और उस क्षण से आगे वह धम्म सेवा करते हैं.
So it's a living experience that the Buddha opened himself up to.
तो यह एक जीवित अनुभव है जिसके प्रति बुद्ध ने अपने आप को खुला किया.
It's that living experience that I believe that when we go to the Mahabodhi temple, we get some distant echo of.
तो दूर से ऐसा कोई प्रतिसाद हमें महसूस होता है जब कभी भी हम उस महाविहार के पास जाते हैं.
That's what I feel about my own experience there.
मैं अपने अनुभव के बारे में यही महसूस करता हूँ.
Something opens up that I can't put any words to.
तो ऐसी कोई बात खुलती है जो मैं शब्दों में नहीं रख सकता.
And I try to revere and rely upon it to the best of my ability.
तो मेरे अपने पूर्ण क्षमताओं के साथ मैं उसके ऊपर निर्भर या उसके प्रति खुला होने की आदर करने की कोशिश करता हूँ.
But my silly little me gets in the way.
लेकिन मेरा जो छोटा सा जो अहंग है मूर्खता पूर्ण वह मुझे रोकता है.
So this discussion of the Gaurava Sutta really became a theme throughout my further conversations with Bhante.
तो यह गर्व सूत्र में यह जो छोटा सा संदर्भ है इस यह संदर्भ ही पूरे संवाद का केंद्र स्थान बना भंते के साथ.
And of course in this recent paper I've discussed that as, or in Bhante's language, as suprapersonal force or energy.
और मेरा यह जो आलेख में या पेपर मैंने जो लिखा है भंते के शब्दों में मैंने उसे पार वैयक्तिक ऊर्जा के रूप में बताया है या उसकी चर्चाएं की है.
And which Bhante sees as a dynamic force that is active in the world when people open themselves up to it.
तो भंते कहते हैं कि यह एक ऐसी सक्रिय ऊर्जा है जिसके संपर्क में हम आते हैं अगर हम अपने आप को उसके प्रति खुला करते हैं.
When you revere and rely upon the Dhamma, you act selflessly.
जब आप धम्म को उच्च या आदर के स्तर पे देखते हैं या उसके ऊपर निर्भर होते हैं तो आप निस्वार्थ रूप से कार्य करते हैं.
So the Gaurava Sutta takes us this far.
तो यह गर्व सूत्र के बारे में है.
And then Brahma Sahampati appears in the sutta.
और फिर सूत्र में अगर हम आगे चलते हैं तो ब्रह्म सहमपति आती है.
And he says, yes, this is what all the Buddhas of the past have done.
और वह कहते हैं कि गतकालीन सभी बुद्धों ने यही किया.
You can think of Brahma Sahampati in whatever way you like.
Brahma Sahampati ko aap jis bhi drishtikon se soch sakte hain.
Presumably as a symbol for something arising within the Buddha's mind.
Aisa hum keh sakte hain ki Buddha ke apne man mein ek pratikatmak roop se koi baat aati hai.
But Brahma Sahampati says a very significant word.
Lekin Brahma Sahampati ek mahatvapurna shabd kehte hain.
He says it's the nature of a Buddha to revere and rely upon the Dhamma.
वह ऐसा कहते हैं कि यह बुद्ध का स्वभाव ही है कि वह धम्म के ऊपर निर्भर होंगे और धम्म को आदर स्थान में देखेंगे.
If you want to be like the Buddha, you need to revere and rely upon the Buddha's teaching.
और आपको अगर बुद्ध के जैसा होना या बुद्ध होना है तो बुद्ध के शिक्षाओं का आपको पालन करना पड़ेगा जो धम्म को धम्म के ऊपर निर्भर होते हैं और धम्म को आदर स्थान में देखते हैं.
So the Buddha then concludes by saying, you know, since then I've revered and relied upon the Dhamma.
और उस क्षण के पश्चात बुद्ध ने अपने आप को पूर्णतः धम्म के लिए समर्पित किया.
But in the other account, in the Anguttara Nikaya account, there's a little bit more.
तो अंगुत्तर निकाय जो है उस निकाय के संदर्भ में और अधिक बात या और ज्यादा बात हमें पढ़ने को मिलती है.
And I hadn't really noticed this before.
इसके पहले मैं इसके संपर्क में नहीं आया, मैंने देखा नहीं.
And it didn't come out in my discussions with Bhante.
और मेरे भंते के चर्चाओं के पश्चात या उस दौरान यह बात बाहर नहीं आई.
The Anguttara Nikaya version has the feeling of being somewhat newer.
अंगुत्तर निकाय का एक हमें ऐसे भाव आता है कि कोई नई बात वहाँ पे है.
The Samyutta Nikaya version comes from a very old portion of the Pali Canon.
संयुक्त निकाय जो है वह पाली के जो पुराने संदर्भ है वहाँ से वह गर्भ सूत्र आया है.
It comes from the first samyutta of the Samyutta Nikaya.
जो संयुक्त निकाय का पहला संयुक्त है वहाँ पे यह सूत्र हमें मिलता है.
Which is particularly collections of verses.
यह गाथाओं का एक संकलन है.
Because the verses tend to be older, apparently, according to scholarly analysis.
क्योंकि जो विद्वान लोग हैं उनके मतानुसार जो गाथाएं सबसे पुराने संदर्भ है बुद्ध के जीवन के.
The Anguttara Nikaya version is almost identical.
अंगुत्तर निकाय जो है वह बिल्कुल वैसा ही है, समांतर है या समान रूप से है.
But the Samyutta Nikaya version is a report of the Buddha's experience.
तो संयुक्त निकाय में जो हम पाते हैं जो पहले के सूत्र का जो रिपोर्ट है या उसका जो अनुभव है वह संयुक्त निकाय के गर्भ सूत्र में मिलता है.
The Anguttara Nikaya version is a report of the Buddha's report of his experience.
तो अंगुत्तर निकाय के संदर्भ में जो बुद्ध ने पहले गर्भ सूत्र में कहा है उसका रिपोर्ट है या उसके बारे में वहाँ जानकारी.
So it's the Buddha talking many years later.
तो इसका अर्थ यह हुआ कि बुद्ध बहुत साल पहले वह बात उन्होंने कही थी.
So he says, yes, since that time I've dwelt revering and relying upon the Dhamma.
तो उस क्षण से ही बुद्ध ने ऐसा कहा है कि मैंने पूरी तरह धम्म के ऊपर ही मैं निर्भर रहा हूँ और वही मेरा आदर स्थान रहा है.
Then he says something that knocked my socks off.
Then he says something which is
knock my socks off. No socks.
Who's what?
क्या मतलब? He said something that was really quite extraordinary.
तो उसके पश्चात उन्होंने कोई बात कही जो असामान्य है.
He said that once the Sangha attained to greatness, I lived revering the Sangha.
तो उन्होंने यह कहा कि जब से मैंने संघ की महानता देखी है मैंने संघ के ऊपर भी यानी उसके ऊपर मैं निर्भय हो सकता हूँ, वह मेरा आश्रय या आदर स्थान हो सकता है.
Well, that really bears some reflection.
और यह एक बहुत ही गहरा और बड़ा चिंतन है.
I don't know whether it's an addition or not. I just can't tell.
अब मैं यह नहीं बता सकता कि बाद में इसे जोड़ा गया या और लोगों ने इसे महसूस किया.
But it certainly seems to have a very profound meaning to me.
लेकिन निश्चित रूप से यहाँ पे एक बहुत ही अप्रतिम या गहरा संदर्भ या अर्थ मुझे यहाँ मिलता है.
So the Buddha who is fully awakened relies upon the Dhamma, the Sangha.
बुद्ध इस बात से पूरी तरह सजग है कि वे संघ के ऊपर निर्भर हो सकते
हैं। He reveres the sangha.
वो संघ को आश्रय या आदर स्थान मान सकते हैं।
Now that really is extraordinary.
यह असाधारण है, असामान्य है।
So what's he mean by the sangha?
अब संघ का यहाँ अर्थ क्या है?
I don't think he means us as a ordinary collection of human beings.
यहाँ बुद्ध बिल्कुल ही एक सामान्य लोगों का समूह है, ऐसा नहीं कह रहे।
Quite a lot of the time, it would be very foolish to live revering us. Quite often, quite a lot of the time, it would be foolish to revere us.
बहुत बार यह हम मूर्खता करते हैं कि हम अपने आप को ही यानी आदर करते हैं, अपने आप के ऊपर निर्भर होते हैं।
And even in the Buddha's own time, there were many foolish monks and nuns.
और बुद्ध के अपने समय में भी ऐसे कई मूर्ख भिक्षु और भिक्षुणियां थी।
You know, there's a famous gang of five bhikshus for whom most of the Vinaya has been constructed.
वहाँ पे पांच बदमाश भिक्षुओं की सेना थी जिसके ऊपर विनय की भी रचना हुई।
We've got more than five in our order, of course. Maybe 500.
अपने संघ में उससे भी ज्यादा है, उसकी संख्या मुझे पता नहीं।
But you know, you couldn't revere and rely upon the sangha in general in that way.
तो ऐसे संघ के ऊपर हम निर्भर या उस वह हमारा आश्रय स्थान नहीं हो सकता।
So the key, of course, is in the words comes to greatness.
उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण अर्थ या शब्द यह है कि उसकी संघ की जो महानता है उसके बारे में।
Yes, mahanta is exactly the word he uses. Yeah. You could say that well, it's when there are enough arhats or shrotapannas, huh?
इसका अर्थ यह है कि वहाँ पर्याप्त मात्रा में अरहत श्रोतापन्न हो।
No doubt, that's true.
और निसंदेह यह सत्य है।
But it seems a little too schematic to my taste.
लेकिन मेरे लिए यह काफी यानी पद्धतिबद्ध है।
I don't think it's just that the Buddha means that, or rather what the Buddha says means to me something more than that.
लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बुद्ध वहाँ उससे भी अधिक कुछ बात करने की कोशिश कर रहे हैं।
Of course, sangha as a refuge is the Arya sangha.
Sangha एक शरण स्थान है जिसे हम आर्य संघ कहते हैं।
But I think what the Buddha is talking about, I suggest, I've got no basis for this apart from my own reflection and experience. I think he's talking about something else.
बुद्ध मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मेरे पास और कोई संदर्भ नहीं है, मैं केवल अपने अनुभव से ही कह सकता हूँ कि बुद्ध वहाँ उससे भी अधिक कोई बात करने की कोशिश कर रहे हैं।
I think he's talking about sangha as an experience.
मुझे ऐसा लगता है कि संघ एक अनुभव के रूप में बुद्ध वहाँ करने की बात कर रहे हैं।
You could say the equivalent of the Dhamma in the sphere of human beings together.
तो धम्म के साथ जो हमें अनुभव आता है बिल्कुल उससे लगभग ही या वैसा ही अनुभव आता है जब हम किन विशेष पुरुषों के साथ या इंसानों के साथ होते हैं।
The Buddha is that experience as reflected in a particular individual.
तो बुद्ध अपने आप में एक व्यक्ति के ऊपर ऐसा चिंतन है।
The Dhamma is that experience as reflected in reflection.
और धम्म वह है जो उस चिंतन के ऊपर जो चिंतन किया गया है।
As experienced internally, so to speak.
ऐसा हम कह सकते हैं कि हमारा जो आंतरिक चिंतन है।
The sangha is that experience interpersonally.
और जो अंतर्व्यक्तित्व के रूप में या अनेक व्यक्तियों के रूप में जो हमें अनुभव आता है वह संघ कह सकते हैं।
The sangha comes to greatness when that spirit is alive within the sangha.
तो
संघ come to greatness.
Comes to greatness. Yeah.
तो संघ की महानता तब होती है जब वह चेतना, वो महान चेतना जब एक आकार स्वरूप में आती है।
Not just in this person or that person.
केवल इस व्यक्ति में या उस व्यक्ति में है, ऐसा नहीं।
But alive as the overmastering spirit. Of the sangha.
लेकिन जीवन जो यानी पूर्ण संघ चेतना में जिया जाता है।
And that as an individual, whether you are have entered the stream or not, you can connect yourself with.
एक वैयक्तिक रूप से आप श्रोतापन्न हो या ना हो, लेकिन आप उस चेतना के साथ अपना संपर्क रख पाते हैं।
And that you can definitely experience when committed individuals come together in sufficient numbers.
और यह आप निश्चित रूप से अनुभव करते हैं जब पर्याप्त मात्रा में ऐसे कटिबद्ध लोग इकट्ठा आते हैं।
So I must say, I feel I experience something of that being here with all of you.
और मैं निश्चित रूप से ऐसा कहूंगा कि मैं वह अनुभव करता हूं जब मैं आप सब लोगों के साथ होता हूं या आपके साथ होता हूं।
Under the Bodhi tree, I experience a very strong exposure to the Buddha.
बुद्ध के तले, वृक्ष के तले या बोधि वृक्ष के तले बुद्ध के प्रति मैं बहुत खुला होता हूं या उनके प्रति मैं बहुत उजागर होता हूं।
And that experience is both very, very uplifting and deeply humiliating.
और वह जो अनुभव है वह काफी उच्च स्तर का होता है, मुझे एक उच्च मानसिक अवस्था में ले जाता है, लेकिन वह पीड़ादायी भी होता है।
And in a way, it's the same with the Sangha.
और एक दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो यह संघ के बारे में भी है।
My own experience in a gathering like this is of a similar sort of mixed kind.
और ऐसे समूह में जो मेरा अनुभव है वह ऐसे ही प्रकार का है, जो उच्च स्तर की बात हो और कोई तो भी निम्न बात है।
I checked with a few of my friends and it seems some of them feel something similar.
और मैंने अपने निजी मित्रों के साथ देखा और उनका भी यही ऐसा अनुभव है।
Maybe most of you don't know what I'm talking about.
आप में से कई लोगों को शायद इसके बारे में ज्ञात नहीं होगा।
A very strong experience of something more than me as an individual and you as an individual.
ऐसी कोई तो भी बात जो एक व्यक्ति के रूप में मुझसे या आपसे कहीं अधिक है।
And that has no room for my ego clinging.
और जहाँ पे कोई जगह नहीं है मेरे स्व के लिए, अहम के लिए।
And I see my mind wanting to know my place, wanting to know who to talk to, wanting to know this, wanting to know that.
और मेरा मन जो किसके साथ बात करना चाहता है, कहाँ मैं जाना चाहता हूँ या किसके साथ मैं जुड़ना चाहता हूँ।
But I believe that there's alive amongst us something of this sangha that the Buddha himself revered.
और मुझे ऐसा लगता है कि हम सब में ऐसी कोई बात जिंदा है, जीवित है, जो बुद्ध संघ अनुभव की बात कर रहे हैं।
It's not there all the time.
हमेशा ही वह वहाँ है ऐसा नहीं है।
Quite often we deny it, we falsify it.
अक्सर हम इसे नजरअंदाज करते हैं या झुठलाते हैं।
But sometimes we pretend.
लेकिन कभी कभी हम उसका अभिनय भी करते हैं।
Sometimes we betray it.
कभी कभी हम उसे धोखा भी देते हैं।
But sometimes it's alive amongst us.
लेकिन कई बार यह हम में जीवित होता है, शाश्वत होता है।
I think this is what Mahamati was reporting Bhante as being concerned about.
और मुझे लगता है यही बात भंते महामति को बता रहे थे।
We don't think of the order simply as groupings of various kinds of interests and categories, huh?
तो संघ को इस तरीके से भंते नहीं सोचते कि किन विशिष्ट मानवों का समूह, स्त्री पुरुष का समूह जो अपने अपने इच्छा या आकांक्षाओं के साथ इकट्ठा आते, अपने इंटरेस्ट के साथ इकट्ठा आते।
And that what we have to do is somehow kind of mingle these different groupings so that they get on all right together.
और फिर वो अपने एक दूसरे के साथ कुछ समन्वय या अच्छा कुछ कहने की बात कहे, करने की बात कहे, ताकि वो एक दूसरे के साथ संवादित रह पाए।
We have to meet completely beyond those separate identities.
हमें इस भिन्न जो पहचान है उससे परे जाकर एक दूसरे के साथ मिलना है।
And that is sangha.
और वह संघ है।
And it's an experience.
और वह अपने आप में एक अनुभव है।
It's an experience of a reality.
यह सत्यता का अनुभव है।
It's not separate from the individuals, but it's not the same as the individuals.
यह व्यक्ति से भिन्न नहीं है।
It's not separate from the individuals, but not the same as them. It's not separate from the individuals, but not the same as them.
एक व्यक्ति से वह भिन्न नहीं है और व्यक्ति के साथ वह समरूप है ऐसा भी नहीं है।
It's something that we experience when we come together in a certain way.
हम वह अनुभव करते हैं जब विशिष्ट पद्धति से हम इकट्ठा आते हैं।
This is what the Buddha, according to the Anguttara Nikaya account, revered.
तो यही बुद्ध ने बात पाई या खोजी अंगुत्तर निकाय के संदर्भ के परिप्रेक्ष्य में.
This is what our sangha exists for.
इसी के लिए हमारे संघ का अस्तित्व है.
It exists to bring this into being.
एक अस्तित्व में आने के लिए यह संघ की निर्मिति होती है.
As a definite living experience.
एक निश्चित जिंदा ऐसा अनुभव.
That we can share with others.
ऐसा अनुभव जो हम और लोगों के साथ बांट सकते हैं.
We have many divisions.
हम में बहुत विभाजन है.
Every country, I'm sure, has its own specialist divisions.
हर देश के अपने एक विशेष और विशिष्ट विभाजन है.
In Britain, when the order started, we used to have the English and the Scots. I don't know whether I think we've got beyond that one now.
तो जब संघ की शुरुआत हुई इंग्लैंड में तो जो ब्रिटिश लोग हैं जो स्कॉटिश है ऐसा एक विभाजन था लेकिन अब हम उससे परे हैं.
Because the Scots now dominate the movement.
क्योंकि जो स्कॉटिश लोग हैं वह अभी हावी है संघ के ऊपर.
It's a joke, by the way. But everywhere they have we have these divisions.
तो हर जगह ऐसे कुछ विभाजन है.
In India, we're very good at groupism.
भारत में समूहवाद में हम बहुत निष्णात हैं.
It's a legacy of a fractured society.
क्योंकि यह जो कई सालों से जो चलती आ रही विभाजित जो समाज है उसकी सातत्यता है.
But we shouldn't become preoccupied with these particular problems, huh?
लेकिन यह जो विशेष या विशिष्ट जो समस्या है उससे हम भर जाए या उसी से हम यानी उसके बारे में ही सोचते रहे जरूरी नहीं है.
Nationalism can't be dealt with on its own level.
राष्ट्रीयवाद जो है वह अपने स्तर पर उसके साथ सामना उसका नहीं किया जा सकता.
This is what I understand Bhante to have meant.
मुझे लगता है यही भंते का अर्थ है जब उन्होंने महामति से बात की.
Nationalism can't be dealt with by internationalism.
और राष्ट्रीयवाद अंतर्राष्ट्रीयवाद के साथ निपटा नहीं जा सकता.
Groupism can't be resolved by discussing groupism.
और जो समूहवाद जो है वह समूहवाद के साथ चर्चा करके नहीं निपटा जा सकता.
Nationalism needs to be resolved by experiencing something that goes beyond nationalism.
राष्ट्रवाद को राष्ट्रवाद से परे जाने वाला जो अनुभव है उसके साथ ही निपटा जा सकता है.
सुप्र नेशनलिज्म
मैं उसे पार राष्ट्रीयत्ववाद कहूंगा.
ग्रुपिज्म नीड्स टू बी डेल्ट विद बाय एक्सपीरियंसिंग बियॉन्ड ग्रुपिज्म.
और समूहवाद जो है वह समूहवाद के परे जाकर ही उसका सामना किया जा सकता है.
वी नीड टू स्ट्रेस दिस डायमेंशन ऑफ एक्सपीरियंस दैट इज बियॉन्ड अस एज सेपरेट इंडिविजुअल्स.
एक ऐसा सक्रिय अनुभव के संपर्क में हमें आना है जो एक व्यक्ति से परे जाता है.
And I feel that we can confidently say that that is alive.
और एक आत्मविश्वास के साथ हम यह कह सकने चाहिए कि वह शाश्वत है या जीवित है.
That is my experience.
यह मेरा अनुभव है.
And well, I hope it's other people's experience, otherwise it can't be mine.
मुझे आशा है कि यह और लोगों का भी अनुभव हो सकता है नहीं तो यह मेरा अनुभव नहीं होगा.
When we come together in a sufficiently vital way, sangha comes into existence.
एक सक्रियता से जब हम इकट्ठा आते हैं तो संघ की निर्मिति होती है.
That is the suprapersonal energy that Bhante speaks of.
तो इसी ऊर्जा की बात करते हैं भंते के शब्दों में उसे पार वैयक्तिक ऊर्जा कह सकते हैं.
I was thinking about this and funnily enough Maitreya Nagarjuna mentioned it over breakfast.
और यही बात मैं कहना चाहूंगा जब नाश्ते के वक्त मैत्री वीर नागार्जुन ने मेरे साथ की.
He mentioned the word sangakaya.
और मैत्रीवीर ने इस शब्द का प्रयोग किया जिसे संघ काया कहते हैं.
And I've been reflecting it just in those terms.
और मैं फिर उसी शब्दों में चिंतन कर रहा था.
We think of the Dhammakaya.
हम धम्मकाया की बात करते हैं.
We think of the Buddha.
और हम बुद्ध की बात करते हैं.
Why shouldn't we think of संघकाया?
क्यों ना हम संघकाया की बात करें?
As this experience is transcending experience.
ऐसा अनुभव जो अनुभव से ही परे जाता है उससे परे जाता है
that comes into being when we come together in a sufficiently spiritually vital way.
और जब हम आध्यात्मिक रूप से सक्रिय होकर इकट्ठा आते हैं तब वह शाश्वत होता है या जीवित होता है अस्तित्व में आता है.
It's a kind of body.
यह एक काया है.
But a body that's it's neither separate from us nor the same as us as individuals.
एक ऐसी काया जो हमसे भिन्न नहीं है लेकिन एक व्यक्ति के रूप में वह उसके समान ही है ऐसा नहीं है.
Now you see it, now you don't.
अभी आप देख रहे हैं बाद में यह नहीं होगी.
Now you don't see it, now you do see it.
अभी आप देख नहीं रहे लेकिन बाद में आप इसे देखते हैं.
It's this third order of consciousness that Bhante speaks of.
यह चेतना का तीसरा स्तर है. थर्ड ऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस. यह चेतना का तीसरा स्तर है जिसके बारे में भंते बात करते हैं.
I won't explain that, but it's in my paper and in Bhante's writing.
मैं अभी इसके बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा लेकिन भंते के और मेरे लिखा में यह है.
So from the Sangha Kaya is what comes about when enough of us are sufficiently deeply committed and even experienced to transcend ourselves.
तो संघ काया अस्तित्व में आती है जब हम गहराई से सक्रिय होकर उस चेतना से इकट्ठा आते हैं अपने आप को परिवर्तित करने के लिए.
And it's that gives us a hope for the future.
और यही हमें भविष्य के लिए आशा देता है.
When once Bhante is gone, that's what will keep us going.
जब भंते चले जाएंगे तो यही काया जो है जो हमें जीवित रखेगी.
And reflecting on it, I've been thinking that I've realized that that experience of Sangha Kaya has always been extremely strong for Bhante himself.
और मैं इसके बारे में चिंतन कर रहा था कि जो संघ काया का जो अनुभव है वह स्वयं भंते के लिए बहुत प्रबल है, मजबूत है.
Bhante is an extraordinarily sensitive man.
भंते असाधारण रूप से संवेदनशील व्यक्ति है.
He's got his own personality, we know that.
उनका अपना एक व्यक्तित्व है उसके बारे में हम जानते हैं.
And as he himself said, it's perhaps in some ways a personality not suited to founding a new order.
एक दृष्टिकोण से वह ऐसा कहते हैं कि वह उचित व्यक्ति नहीं है संघ की स्थापना करने के लिए.
And that's created certain difficulties for us.
और उसके कारण कुछ अड़चने हम में आई.
But never mind, he's the one we've got.
लेकिन चिंता मत कीजिए उन्होंने ही संघ की स्थापना की है.
And he's more than good enough.
और वे बहुत ही उत्कृष्ट है इस कार्य में.
And he's deeply sensitive to the Sangha.
और संघ के प्रति वह गहराई से संवेदनशील है.
And I would say that I've experienced retrospectively Bhante revering the Sangha.
और मुझे ऐसा महसूस या प्रतीत होता है कि भंते जो है वह संघ के ऊपर निर्भर है.
Bhante is deeply tuned in to this spirit of the Sangha.
भंते गहराई से सुसंवादित है जो चेतना हम सब लोग संघ के बारे में महसूस करते
हैं. He is strongly affected by disharmony, that's obvious.
यह स्वाभाविक है कि हमें जो विसंवाद जो होता है उसके कारण उनके ऊपर असर होता है या प्रभाव होता है.
Sometimes wonder whether his illness has in the past has been affected by that.
और कभी उन्होंने ऐसा भी कहा कि जो उनकी जो बीमारी या उनका जो आजारीपन है वह उसके कारण प्रभावित हुआ.
But it's just that body of the Sangha, he's at the heart of it.
लेकिन संघ काया जो है या संघ जो है वह उनके दिल में है, वह उनके केंद्र स्थान में है जीवन के.
Deeply, deeply committed to it.
वह गहराई से इसके लिए कटिबद्ध है.
What he cares about more than anything else.
मुझे लगता है कि किसी भी अन्य चीज से इसके बारे में वह सबसे ज्यादा चिंतित होते हैं.
It's what keeps him alive.
यही बात है जो उनको जीवित रखती है.
And I think if we want him to keep alive, we need to keep that Sangha spirit alive.
और अगर हम चाहते हैं कि भंते जीवित रहे तो यह जो संघ चेतना है उसे हमें जीवित रखना चाहिए.
For all his unpromising personality in certain ways, he's been able to create the Sangha.
भले ही उनके अपने व्यक्तिगत में कुछ भी खामियां हो या कमियां हो वह एक पूर्णता से उत्कृष्ट व्यक्ति है संघ की स्थापना करने के लिए.
There are certain things about Bhante that are very inconvenient, especially for us in India.
ऐसी कुछ बातें हैं जो असुविधाजनक है भंते के व्यक्ति मत्व के बारे में विशेषकर भारत में.
But he has been the one who has made a living sangha.
लेकिन वही एक ऐसे इंसान है जिन्होंने यह जीवित संघ बनाया.
Now it's we who are keeping that alive.
अब हम लोग हैं जो इसे जिंदा रख रहे हैं या जीवित रख रहे हैं.
We are in tune with that suprapersonal force which is sangha.
हम उस ऊर्जा के बारे में एक रूप है जो पार व्यक्तिगत ऊर्जा है जो संघ को जीवित रखती है.
It comes and it goes.
यह आती है और जाती है.
It goes when we get in the way.
यह जाती है अगर हम अपने आप की रुकावट बने.
In my valley of death days, I had a very deep experience of this.
जब मैं अपने मृत्यु के खाई में तरंग रहा था यह मुझे अनुभव आया.
A friend of mine, a very good friend of mine, Dhammachari Lokabandhu, wrote to me.
मेरे बहुत अच्छे मित्र है धर्माचारी लोक बंधु, उन्होंने मुझे लिखा.
And he did a friend's job.
और एक दोस्त का यानी जो उत्कृष्ट कर्तव्य होता है वह उन्होंने किया.
He spoke to me very directly.
बहुत ही प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने मेरे साथ बात की.
He said, Subhuti, what you need to do is rejoin the order.
उन्होंने कहा कि Subhuti, आपको संघ को फिर से जुड़ने की प्रक्रिया करनी चाहिए.
I thought, phew, I ordained it.
मैंने सोचा कि अब यह क्या है, मैंने इसको दीक्षा दी है.
What he think he's talking about?
और मैं सोच ये क्या मेरे बारे में बात कर रहा
है. I gave him the sangha.
मैंने उसको संघ दिया है.
But the back of my mind, I knew what he meant.
लेकिन मेरे मन के भीतर मैं यह सोच रहा था कि वह क्या बता रहे हैं या क्या उनका अर्थ है.
I'd identified with myself in a position.
क्योंकि मैंने अपनी स्व की जो पहचान है एक पद या प्रतिष्ठा के साथ की.
And that means I'm out of the sangha.
और उसी ने मुझे संघ के बाहर रखा.
And very grudgingly I took his words.
और धीरे धीरे मैंने फिर उनके शब्दों को अपने अंदर लिया.
Cursing him, I blessed him.
उनको उनको बददुआएं देते हुए मैंने उनको दुआएं दी.
Actually I need to do that quite often.
और अक्सर मैं यह ऐसा करता हूँ.
Every now and again I need to rejoin the order.
हमेशा ही मुझे संघ को फिर से अपने आप के साथ जोड़ना है.
I hope I am alone in this experience.
I hope I'm
the only one who has this experience.
मैं आशा करता हूँ कि मैं अकेला ही रहूँ ऐसे अनुभव में.
Arya Ketu is agreeing, so he obviously has it too.
अब आर्य केतु सहमति दिखा रहे, शायद उनका भी यही अनुभव हो.
I suspect, brothers and sisters, we all have that experience.
मैं समझता हूँ भाई और बहनों, हम सबको ऐसा अनुभव आता है.
We all need to rejoin the order again and again and again.
संघ को बार बार हमें जुड़ना होता है, बार बार उसके साथ होना होता है.
Set ourselves aside and open up to the spirit that goes beyond us as separate individuals.
अपने आप को आप अपने रास्तों की रुकावट बनने से अलग कर दीजिए और उस बड़े जो ऊर्जा है उसके साथ अपना संपर्क प्रस्थापित कीजिए.
That I think is what our convention is about.
और मुझे लगता है यही सार है अपने अधिवेशन का या परिषद का.
When we come together in this way, we have a strong experience from time to time of genuine sangha.
जब हम इकट्ठा आते हैं तो बार बार एक वास्तविक शाश्वत संघ का अनुभव हम लेते हैं.
But we're all flashing in and out of it.
लेकिन हमेशा ही हम अंदर बार होते रहते हैं.
We're all sometimes identifying with our own narrow selves, sometimes opening up.
कभी-कभी हम हमारा जो संकुचित स्व है उसके साथ हमारी पहचान करते हैं और कभी-कभी उस बड़े संघ के लिए हम अपने आप को खुला करते हैं.
And I strongly suspect we're all doing it.
और यानी मुझे पूरा भरोसा है कि हम ऐसा अनुभव लेते
हैं. It's all right.
और यस, ठीक है.
It's bound to happen.
यह होना स्वाभाविक है.
Until we go beyond self-clinging altogether, it will happen.
जब तक हम अपने स्व से परे या स्व आसक्ति को नष्ट नहीं करते, यह होना स्वाभाविक है.
But there is something alive that we can give ourselves up to.
लेकिन हम में ऐसी भी कोई बात जीवित है जिसको हम पूरी तरह समर्पित या हम दे सकते हैं, जिसके प्रति हम खुला हो सकते हैं।
This is the glorious gift that Bhante has given us.
और यह एक अप्रतिम भेंट भंते ने हमें दी है।
And that we've given each other.
और हमने एक दूसरे को दिए।
And that the Buddha himself gave the world.
और यही बात बुद्ध ने दुनिया को या इस विश्व को भेंट स्वरूप दी है।
So let us dwell from now on, revering and relying upon the Dhamma, of course.
निश्चित रूप से इस क्षण के पश्चात ही हम धम्म के ऊपर निर्भर रहेंगे, वही हमारा आश्रय और आदर स्थान रहेगा।
But let us live revering the Sangha.
लेकिन संघ के ऊपर भी हम वैसे ही निर्भय या आश्रित रहे।
Constantly setting ourselves aside and opening up to this spirit that is more than any of us as individuals.
निरंतर रूप से हम अपने आप को या अपने अहं को बाजू में रखे और ऐसे विशाल संभावना के लिए खुला रखे जो एक व्यक्ति से परे।
And as I wrote in my recent paper, sometimes you can experience this even when people aren't behaving like that.
और मैंने अभी अभी अपने आलेख में यह लिखा है कि
even when people aren't behaving as if they're a sangha, you can still experience the sangha through them.
भले ही लोग संघ के जैसा आचरण ना करते हो, लेकिन फिर भी हम महसूस करते हैं कि कोई सांगिक तत्व या सांगिक चेतना वहाँ पे है।
It's a strong spirit that we all have connected with.
यह एक एक प्रबल चेतना है या प्रबल भाव है जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं।
So let us, brothers and sisters, in these days, seize this chance.
और भाई और बहनों, आइए अगर ऐसे मौके हमें मिलते हैं तो हम इसका फायदा उठाएं।
Let's sit at the feet of the Buddha.
बुद्ध के चरणों के पास हम बैठे।
Open ourselves up to the Dhamma.
धम्म के प्रति हम अपने आप को खुला करें।
So that we can revere and rely upon it.
ताकि हम उसके ऊपर निर्भय या वह हमारा आदर स्थान बने।
And let us just open up to this spirit that is more than any of us as individuals.
और एक व्यक्ति निष्ठता या एक व्यक्ति होने के परे जो चेतना है उसके प्रति हम अपने आप को खुला करें।
And let us revere that.
और उस वह भी हमारा आदर स्थान हो।
Let us even rely upon it.
और उसके ऊपर भी हम निर्भर हो सकते हैं।
Best chance for us.
यह
to give up our self-clinging.
और यह सबसे अच्छा या सुनहरा मौका है अपने स्व आसक्ति को नष्ट करने का।
नमो बुद्धाय, जय भीम।
नमो बुद्धाय, जय भीम।
Thank you very much, Sabuti. Not only we have a glorious gift from the Buddha, a glorious gift from Bhante, a glorious gift of a wonderful Dhamma talk from Sabuti. Thank you very much.
So, Sabuti ji, बहुत बहुत धन्यवाद. Buddha की ओर से भी हमें बहुत अच्छा gift मिला, Buddha और Bhante की और आपकी ओर से भी हमें बहुत अच्छा gift मिला, भेंट मिली. इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
And yes, again.